इंटरनेट की जो भी परेशानियां हैं, जो भी इश्यूज हैं, सभी जो मीटिंग के दौरान में परेशानियां होती हैं इंटरनेट की वजह से, आज भी कहते नाम से सब मिट जाए। एक दफा फिर से मैं खुद को, भाई सैमुएल को, ब्रदर ब्रूनो को, जितने लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है, सबको तेरे हजूर में रखता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, मुहाफ़ज़त करना, जो कुछ मांगता हूँ तेरा जलाली नाम लेके मांगता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर सैमुएल। Are you here, everybody?
Yes, brother.
Brother, yes, Samuel, brother, you can also say something.
Of course. मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। जैसा कि भाई दानिश ने भी आप से जो तारुफ करवाया कि हम यहाँ पर हैं ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें, खुदा के मुंह की बातों को जान सके, उसके भेदों को, वो भेद जो बहुत ही अमीक है, जो हम इंसान होते हुए नहीं सीख सकते, लेकिन खुदावंद का पाक रूह जो हम सबका अच्छा मददगार है, हमें उन भेदों को सीखने में हमारी मदद करता है। और उसने हमारे लिए उस्ताद मुकर्रर किए हैं, रहनुमा मुकर्रर किए हैं, जिनकी बदौलत हम इन भेदों को सीख सकते हैं और आसानी के साथ सीख सकते हैं। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमें इन भेदों को सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारा खुदावंद हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। उसे बहुत से तरीके, बहुत से वसाइल उसे हमारे लिए रखे हुए हैं, वो बहुत से जराए के वसीला से हम तक अपने मुंह की बातों को पहुंचाता है, और इसलिए पहुंचाता है ताकि हम सिर्फ नामी मसीही ना हो, हम उन तंजीमों की तरह मसीही ना बने, बल्कि हम जो हकीकी मसीही हैं, जो खुदा को अपना साथी मानते हैं, जो खुदा के साथ रहना पसंद करते हैं, हम उनकी मानद बने, हमारी तरक्की हो, हम रूहानी तौर पर बढ़े, हम बढ़े, हमारे खानदान जो है वो रूहानी तौर पर तरक्की करे और रूहानी तौर पर बढ़े। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से सीखें और इस कलाम के वसीला से अपनी बरकत को हासिल करें, और इस कलाम के वसीला से हम अपनी कमियों को, कमजोरियों को आईने की तरह देख सकें। जैसे आईना हमें हमारे चेहरे के ऊपर कोई निशान होते हैं, गंदगी लगी होती है, तो वो हमें दिखाता है। ये कलाम भी ऐसे ही है, ये हमारी कमियों को, हमारी गंदगी को, हमारी कमजोरियों को, हमारी लाचारियों को दिखाता है हमें, और हमने इनको देखना है। देखने के बाद हमने उस तमाम तर अपनी गलतियों को, कोताहियों को अपनी जिंदगियों से इस कलाम के वसीले और खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमने अपनी जिंदगियों को पाक करना है, और हमेशा अपने लिए, अपने खानदान के लिए और अपने हमसायों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अजीजों कारब के लिए हमने एक खुशी का पैगाम अपने उनके लिए रखना है, ताकि हम उनको एक अच्छा पैगाम दें। और हम जिस तरह से हम उसके कलाम में तरक्की करने के लिए हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं, कोशिश करें कि दूसरे लोग भी इस कलाम के वसीला से निजात हासिल करें, तरक्की करें और उनके खानदानों में भी बरकत हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। अभी वक्त है ब्रदर ब्रूनो के लिए कि हम मैं दावा देता हूं भाई ब्रूनो को कि आज का जो भी कलाम है हम उनके वसीला से सीखेंगे, और खुदावंद का पाकरू जो हम सबका अच्छा मददगार है वो हम सबकी रहनुमाई करेगा, और हम इस सारे सीखने सिखाने के अमल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि सारे वक्त में उसका पाकरू हमारे साथ हो और शामिल हाल हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बहुत शुक्रिया।
Hallelujah, hallelujah. God bless you all in the name of Lord Jesus Christ.
Amen. Khudamand aap sabko barkat de, Khudamand Yesu Masih ke naam se.
I ask you to pray a lot for me because I feel really the Satan always attacking me. You know the famous sermon of Brother Branham.
Aur main aapse yahi kahunga ki aap mere liye हमेशा दुआ करते रहे, क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा मेरे ऊपर हमला आवर होता रहता है। और आपको वो पैगाम भी याद होगा जो ब्रदर जो भाई ब्रनम ने सुनाया था।
When he said the biggest, the greatest battle, you know?
और उन्होंने कहा कि जो एक बड़ी जंग है, और आप जानते हैं इस बारे में।
When you speak about you remember this five doors? The memory, the conscience, the emotions, all those kind of things. Remember this, huh? It's always in the head. Always in the brain.
और आपको याद होगा हमने सीखा था कि हमारे पांच किस्म के हमारे जो है वो जहन के अंदर बातें होती हैं और वो हमेशा यादें होती हैं और जज्बात होते हैं एहसासात होते हैं और ये सारी चीजें हमारे इनका ताल्लुक हमारे जहन के साथ होता है
And the I'm sure that the battle is the same for you. It's always in your thoughts, in your brain, in your conscience, in your memory, in your feelings. Always there that Satan attack. It's not really a carnal war. It is a spiritual war.
और आपके साथ भी ऐसा होता होगा और ये एक ऐसी जंग है जो रूहानी जंग है ये जिस्मानी जंग नहीं है हमेशा शैतान जो है वो आपके ख्यालों के साथ जज्बातों के साथ एहसासातों के साथ आपके जो महसूस करने की जो बातें हैं उन सारी बातों के साथ वो लड़ता है और जंग करता है
एंड सो दिस लास्ट डेज आई हैव इन माय हार्ट टू स्पीक अबाउट टू आई हैव टेकन ब्रदर फ्रैंक ओनली ब्रदर फ्रैंक्स राइटिंग एंड आई वुड लाइक टू रीड विद यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस against accusation
aur aapko pata hai ki pichle hafte mein jo pichle hafte guzre usme humne bhai frank ki bahut sari cheezon ke bare mein sikha jo unhone hame sikhayi humne dekha ki hum kis tarah se maaf kar sakte hain dusron ko
today I was thinking of job of david who said he was watching the stars of heaven or this creation of god And he said, "Who are we that God takes care of us?"
और आज मैं दाऊद के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर वो लिखता है, वो कहता है कि आसमान के सितारों को देखो, जो आसमान के ऊपर हैं, और हम क्या हैं उनके मुताबिक, लेकिन फिर भी वो हमारा ख्याल रखता है.
And so, indeed, God, the eternal God, came to us. It's not us. Who was looking? Were looking for God. God has descended from heaven for us.
और ये हम नहीं हैं. अगर हम देखें, तो ये हम नहीं हैं जो जिनके लिए जो खुदा को ढूंढते हैं या जो खुदा के पास जाते हैं, बल्कि खुदा खुद हमारे लिए आसमान से ज़मीन पर आया.
And remember, God was in Christ. Reconciling the world with himself.
और आपको याद है लिखा हुआ है कि खुदा मसीह के साथ इस दुनिया का मिलाप करवा रहा है.
You know, when you go on the internet, you often see the debates. Even I saw recently a Muslim entering in the church, and he wanted to speak during the worship, just to defend his point of view.
और पिछले दिनों में आपको याद है आप इंटरनेट के ऊपर जाए तो आप देखें मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक मुसलमान जो था दौरान इबादत वो अंदर हुआ दाखिल हुआ और उसने अपनी बात वहां पर करना चाहिए
बिकॉज वी हैव बीन टॉट बिकॉज वी हैव रिसीव्ड टीचिंग्स वी अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू
क्योंकि हमें ये सिखाया गया है और मैं उनका जो नुक्ता था उस नुक्ते तक पहुंच चुका हूं और हमें पता चल जाता है कि वो किस नुक्ते पर आकर बात करना चाहते हैं
Seeing that we do not need an intercessor.
और हमें किसी दरमियाने की जरूरत नहीं है
I understand what you meant.
और मुझे पता है उनका क्या मतलब है इस बात के बारे में
But when we understand that we need forgiveness and then we need blood if you begin to understand this you are on the good way
lekin jab hum is baat ko samajh jate hain ki hame khoon ki zarurat hai to phir aap ek theek raste ke upar chalna shuru ho jate hain
because if of a muslim or anybody say we do not need an intercessor or an advocate, a lawyer, an intercessor, you see what I mean? But you understand that they also need blood, because they make the korbani also. So, in fact, they contradict themselves when they say they do not need an intercessor because they need blood.
और आप देखें कि ये जो मुसलमान है ये इस बात को कहते हैं कि हमें दरमियानी की जरूरत नहीं है और ना ही वो किसी दरमियानी को मानते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो कुर्बानी की सूरत में उनको भी खून की जरूरत है और वो उन्होंने भी खून की सूरत में कुर्बानी की सूरत में एक दरमियानी रखा हुआ है.
And once for all we must understand why an animal or blood has to be shed. It's at our place, on our behalf, because of our sins. You know, this must be clear. So automatically, it's already a good thing to recognize that we are poor sinner.
और जब हम इसको देखते हैं कि एक खून जो है उसके वसीला से वो किस लिए बहाया जाता है, वो अगर कोई जानवर कुर्बान किया जाता है तो वो हमारी वजह से हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया जाता है, तो हमें इस बात को समझना है कि ये जो खून है ये जरूरी था उस वक्त.
And so I will just take, brothers and sisters, just take circular letters. I've got a lot of pages. It will be maybe 2, 3, 4, 5 meetings, I don't know. And just on the topics of pardon, the forgiveness of God against accusation of the devil.
और हम सर्कुलर लेटर को देखेंगे और ये काफी ज्यादा पेजेस हैं और ये काफी ज्यादा मीटिंग्स भी इसके ऊपर लगेंगे, लेकिन हम इसमें से देखेंगे कि जब शैतान हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है तो हम किस तरह से दूसरों को उन इल्जाम की वजह के वसीला से माफ कर सकते हैं.
So I do not prepare a compilation like I did before, just ordering things. I will just read chronologically what Brother Frank has written.
और मैंने इसको ठीक तरतीब के साथ नहीं तैयार किया, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा और हम देखेंगे कि भाई फ्रैंक जो है इसके बारे में क्या लिखते हैं.
For example, a letter of 1974, July.
मिसाल के तौर पर ये खत 1974 के अंदर लिखा गया, जुलाई के अंदर.
I will not read exactly read sometimes because I must summarize. Huh?
मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं हमेशा ऐसा करता हूँ तो मैं खुलासा कर देता हूँ.
But brother, you remember in the letter of James. In the epistle of James. You remember this?
आपको याद है जो यकूब का खत था?
I will take my Bible and you read to be quicker. We just read a bit when you have to read, we'll read just Nordu. And you see in James we speak about Job. You remember this?
और हम इसको जरा जल्दी से पढ़ेंगे और हम इसको सिर्फ उर्दू के साथ पढ़ेंगे. आप देखें कि जब हम यकूब के अंदर इसकी बात करते हैं तो वो यूब की बात करता है.
And this you can take it. I will just open James if you want. We read one verse here in James.
I'm calling. हम खोलेंगे यकूब का खत.
चैप्टर 5
उसका 5 बार.
एंड यू कैन रीड ब्रदर 7-13.
7-13 आए तक हम इसको पढ़ेंगे. ओनली उर्दू ब्रदर?
यस. 7-11
लिखा है, 7-11 आयत तक लिखा है. 7, बस ए भाइयों खुदावन की आमद तक सबर करो. देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मी के बरसने तक सबर करता रहता है. वर्ष 8, तुम भी सबर करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदावन की आमद करीब है. वर्ष 9, ए भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ, देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है. वर्स 10, ए भाइयों जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सबर करने का नमूना समझो. वर्स 11, देखो सबर करने वालों को हम मुबारक कहते हैं, तो تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا ہے اسے بھی معلوم کر دیا, جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے. آمین.
Hallelujah. Amen. You see, the Lord is full of compassion and mercy.
آپ دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ ترس سے بھرا ہوا ہے.
Hallelujah. And so, Brother Frank writes that James does not speak of the suffering of Job.
اور بھائی فرینک کہتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب جو ہے وہ ایوب کے جو اس کی تکلیف تھی اس کی بات نہیں کر رہا.
He speaks about his patience.
یہاں پر وہ اس کے صبر کی بات کرتا ہے.
And he said that, the brother Frank writes, we, the church, we must also persevere.
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کلیسیا ہیں ہم نے بھی ایسے ہی محتاط رہنا ہے.
And he said that often it seems that the devil has received permission from God, a permission to strike us.
اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ خدا سے اجازت لیتا ہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے.
And you see the messengers of bad news came one after another.
آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے پھر آپ کو پیغام ملیں گے, ایک برا پیغام مل رہا ہے اس کے بعد ہی دوسرا بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے, پھر تیسرا بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے.
But when you read Job, you remember the story of Job, there was a lot of chapters where you see the Job's friends accusing him and blaming him.
اور آپ جب ایوب کی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو اس کو بلیم بھی کر رہے تھے, جو اس کے اوپر الزام بھی لگا رہے تھے.
Because they did not understood Job.
کیونکہ وہ ایوب کو سمجھ نہیں پا رہے تھے.
And Brother Frank Wright said sometimes we ourselves are misunderstood by our friends or by our brothers.
اور بھائی فرینک کہتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے اپنے دوستوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو.
But despite of this accusation, God says, if you read Job first chapter, is written, I will read just in English, there is no one like him, blameless on earth, blameless, upright, one who fears God and shuns evil. You can read Job 1:8.
اور یعقوب ایک باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے, وہ شخص دو اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے.
You read 1:8, huh? Job 1:8.
Verse 8, لکھا ہے وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے.
Amen. So it's written that he was a correct man, correct? Correct. Right man. Righteous.
اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ راستباز شخص ہے.
But he was tested. He was put in trial, you know.
لیکن اس کا جو ہے وہ امتحان لیا گیا اور وہ اس میں سے گزرا.
But we must be like this in the trials until the full restoration.
لیکن ہم نے بھی ایسے ہی دیکھنا ہے اور تب تک ہم نے اس امتحان کا مقابلہ کرنا ہے جب تک ہم بحال نہیں ہو جاتے.
And we must think of Jesus Christ who said in Luke 22, Simon, Simon, Satan has desired to have you so that he may sift you like wheat. Luke 22, 31 and 32, you can read.
Luke 22 باب اس کی 21 اور 22 آیت کو ہم دیکھیں گے. لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں 21 and
22, Luke 22, 31, 32.
لوکا 22 باب اس کی 31 اور 32 آیت لکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں 31, شماؤن شماؤن, دیکھ شیطان نے تو تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ جیوں کی طرح پٹکے. 32, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. آمین.
آمین. So Brother Frank writes that Jesus has also prayed for us, not only for Simon, also for us all.
اور بھائی فرینک لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صرف شماؤن کے لیے دعا نہیں کی بلکہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے.
And so we just wait for this time of restoration of all things.
اور ہم نے صرف انتظار کرنا ہے تاکہ ہم بحال ہو جائیں ہر ایک چیز کے اندر.
We only have to be patient until the time has come.
اور ہم نے تب تک جو ہے وہ صبر رکھنا ہے جب تک وقت نہیں آ جاتا.
And God have mercy of our poor condition because sometimes we are far from the restoration of all things.
اور خداوند ہماری بری جو حالت ہوتی ہے اس کے اوپر ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے.
But whatever may be, if we are accused, if we are in bad condition, let us be patient and believe that God will change everything for us.
لیکن جو بھی ہے آپ کے اوپر الزام لگتے ہیں یا آپ کو ستایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ہر حال کے اندر پورا صبر رکھنا ہے اور آپ نے اطمینان رکھنا ہے ہر چیز میں.
Hallelujah. And then here we have in June 79.
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوتا
ہلو
جون 79.
Yes. So it is another circular letter, another extract.
یہ ایک اور اشتہاری خط ہے اور اس کے اوپر بھی لکھا گیا ہے.
And he said that Brother Frank writes that in a church, as long as we have problems one with another, the Spirit of God cannot act among us.
اور وہ کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب کلیسیا کے اندر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں تو خدا کا روح وہاں پر کام نہیں کرتا.
And so we must say openly in the prayer, we say to God everything. We must open our heart to the Lord and pray Him and say what is not good in our life.
اور ہمیں پھر کھلے دل سے یہ بات کہنی چاہیے خداوند سے کہ خداوند تو ہمارے دلوں کے اندر کام کر اور ہماری سارا جو کچھ بھی ہے وہ صرف تیری مرضی کے ساتھ ہو سکے.
You all remember in the Bible that the unity is extremely important. It is crucial to have the same spirit.
اور ہم سب کو پتا ہے کہ بائبل مقدس میں اتحاد جو ہے وہ سب سے لازمی چیز ہے اور ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے.
And so he also said that we must not have a spirit of quarrel, but a spirit of love.
اور اسے یہ بھی کہا کہ ہماری جو روح ہے وہ جھگڑالو نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمارے اندر محبت کی روح ہونی چاہیے.
And you remember this sentence, if you bite and devour one another, take heed that you be not destroyed by one another. You can read this, if you want, just translate this, we must not bite or we must not hit one another. We must respect and love one another.
اور ہمیں دوسروں کے ساتھ نفرت نہیں کرنی اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے بلکہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے.
So we must love, as it is written, our neighbor, our neighbor like ourselves.
اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھو.
God wants to destroy the works of the devil.
خدا چاہتا ہے کہ شیطان کے تمام ختم کرے یا تباہ کر دے.
But the devil wants to destroy us.
لیکن شیطان ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے.
And God destroys sin. But Satan wants to expose the sin. You see the difference? God destroys sin, but Satan exposes the sinner.
खुदा जो है वो गुनाह को खत्म करना चाहता है, लेकिन शैतान जो है वो जो गुनाहगार है उनको दूसरों के सामने लाना चाहता है.
That's why I often said to you a lot of times, never accuse. Never accuse. That this Satan is the accuser of the brethren.
और मैं इसीलिए आपसे हमेशा इस बात को कहता हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर इल्जामात मत लगाएं, क्योंकि ये शैतान का काम है जो हमेशा इल्जामात लगाता है.
But our Savior Jesus Christ, our Lord, is our intercessor.
लेकिन हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद, हमारा दरमियानी है.
And so we must thank God because He is able to turn even a defeat into a great victory. We must be patient.
और इसलिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए क्योंकि उसने एक बड़ी जीत को हासिल किया, एक बहुत सी मुश्किलों को सहकर.
We must not go to the left or to the right. Just the position is where? Just under the cross at Golgotha, under the blood of the Lamb.
और हमने ना दाएं जाना है और ना ही बाएं जाना है, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ सीधा रास्ता इख्तियार करना है, और वो रास्ता जो गुलगत्ता की तरफ जाता है और जो उसके खून की तरफ हमें लेकर जाता है.
And a very important thing, I think that I have already said this to you.
एक बहुत ही खास चीज मेरे ख्याल में, मैंने ये बात आपसे पहले भी की है.
And I read this sentence to you. It is Brother Frank writes this. I have already said to you, the enemy will be able to play with us.
और भाई फ्रैंक ये जुमला लिखते हैं, और मैंने ये पहले भी जुमला आपके सामने पढ़ा है. भाई फ्रैंक लिखते हैं कि जो दुश्मन है वो हमेशा आपके साथ खेलना चाहते हैं.
As long as we have not brought our sins in the light of God.
और तब तक वो खेलते रहते हैं जब तक हम अपने गुनाह खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी के अंदर नहीं लेकर आ जाते.
I repeat, the enemy will be able to play with us as long as we have not brought our sins into the light, under the blood.
हमारे दुश्मन तब तक हमारे साथ खेलते रहते हैं जब तक हम अपने गुनाहों को रोशनी के अंदर नहीं लेकर आते, खुदावंद यीशु के खून के नीचे नहीं ले आते हैं.
And you will see that with the time, when you grow, you will see that it is impossible to accuse someone because you are all weak. And we must say like Paul, I am the first.
और आप देखें कि जैसे पालूस कहता है कि मैं सबसे कमजोर हूँ, निकम्मा हूँ, ऐसे ही हम सब अपने आप को कमजोर समझते हैं और हम कमजोर होते हैं.
And I remember that one day the Lord has corrected Brother Branham, because Brother Branham, you know, he was right when he said, "Well, those rickies, those ricketers." It was an expression to say, "Look at the poor guys." But in fact, even if we are right, we must have mercy and compassion because they are human and they must be saved.
और हम देखते हैं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम जो है वो इंसानी तौर पर इंसान होते हुए अपने आप को कमजोर समझते हैं, और हम होते भी हैं, लेकिन खुदावंद जो हमारा मेहरबान खुदा है वो हमें हमेशा कोशिश करता है कि वो हमें इन सारी बातों से निकाल सके.
So I can only ask you and encourage you to have a moment of prayer alone with God, and all the sins, all the things that you do, or your weaknesses, or your shortcomings, you really or really openly say to Jesus to get rid of this and to give you liberty, the true liberty.
और मैं आपसे यही कहूंगा और आपकी हौसला अफजाई भी करूंगा कि हमेशा खुदावंद के साथ आप अकेले में वक्त गुजारे, और हमेशा खुदावंद आप के साथ होगा, और आप तभी आजादी हासिल कर सकेंगे जब आप उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारेंगे, और फिर आपको آزادی ملے گی ان تمام باتوں سے.
Because as we have said last time, we cannot serve in the old man. I prayed Almighty God to renew myself, to renew the new man, and for all of you also.
اور ہم کہیں گے, ہم کہہ سکتے ہیں خداوند کو کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک نیا شخص بنا دے اور ہماری روح کو نیا بنا دے.
And when maybe you hear about the fight, just think of the fight against ourselves. We are our first enemy sometimes.
اور ہم دیکھیں کہ ہم نے خود کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کیونکہ ہم خود اپنے سب سے پہلے دشمن ہیں.
In June 79, in the letter, Brother Frank also speak about the Galatians. You know, it's written, walk by the Spirit.
اور گلتیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے روح کے اندر چلنا ہے.
And so you will not fulfill the desires of the flesh.
اور آپ اپنی جسمانی خواہشات کو خود سے پورا نہیں کر سکتے.
And so we are at the center of the battle. The battle is when you speak about when you speak to a Muslim about jihad, just say yeah, say clearly the jihad, and some people believe it, the jihad is against ourselves. The fight is against our flesh. It's not carnal, it is spiritual.
اور ہم جو ہیں وہ جنگ کے درمیان میں, اور بہت سارے مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم جی جہاد میں جا رہے ہیں, لیکن اصل میں جہاد کا بھی کیا مطلب ہے؟ جہاد کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ ہمارے خود کے ساتھ ہے, ہمارے جسموں کے جسمانی خواہشوں کے خلاف ہے.
Because it is not a contradiction. The flesh is there, but behind the flesh, this brother Frank writes, behind the flesh, the enemy wants to have some claims on us. He wants to do something bad through this flesh.
اور جب ہم جسموں کی بات کرتے ہیں, بدنوں کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے دشمن جو ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر اس جسم کے پیچھے چھپ کر کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں.
But there is also the spirit, and behind the spirit there is God.
اور لیکن روح وہاں پر بھی موجود ہوتی ہے, اور اس روح کے پیچھے جو ہے وہ خداوند ہوتا ہے.
And so we have been bought, again we speak about the blood of the Lamb. We have been bought, we have been redeemed at a great price by the blood of the Lamb.
اور ہم جو ہے وہ خداوند اس برے کے خون کے ساتھ خریدے ہوئے ہیں, اور ہماری ایک بیش ہماری جو ہے وہ بیش قیمت ادا کی گئی ہے, اور وہ قیمت جو ہے وہ اس برے کا خون ہے.
And each Christian that we are must say, we do not belong to ourselves any longer.
اور ہم میں سے ہر مسیحی ہمارا خود سے کچھ بھی نہیں ہے.
But we belong to the Lord Jesus Christ who redeemed us. Hallelujah.
اور لیکن ہماری جو رہائی جس نے ہمیں بخشی ہے, ہمارا تعلق اس خداوند کے ساتھ ہے.
So that's why there's this expression, if we are dead with Christ, we are submitted to the Spirit.
اور اسی لیے لکھا ہے کہ اگر ہم مسیح میں مرتے ہیں تو پھر ہم روح میں ہوتے ہیں.
And I should not say if, we must say we are dead with Christ, and we are submitted to the Spirit, and we are baptized in His name.
اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر, بلکہ ہمیں مسیح میں مرنا ہے اور پھر ہمیں روح کے تابع ہونا ہے اور پھر ہم نے بپتسمہ لینا ہے.
So we must read this Galatians, fruit of the Spirit and the fruit of the flesh.
اور ہم پڑھ سکتے ہیں گلتیوں کے اندر کہ روح کے پھل جو ہیں وہ کون سے ہیں, اور جو برے بدن کے پھل ہیں یا جسمانی پھل ہیں وہ کون سے ہیں.
But we also believe that God has given us the inheritance of the saints. So we are really His sons and daughters, and we would inherit what He has said.
اور ہم اس کی میراث ہیں, اور جو اس سے کہا ہے ہم ویسے ہی اس کی میراث ہیں, ہم اس کے बेटे और बेटियां हैं.
And again, I repeat, we must not accuse, because this epistle of Galatians tells, you know, the fruit of the Spirit, everybody has done it, because you are all the same sinner and poor sinner.
और हम जब हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सब गलतियों के खत के मुताबिक हम सब जो हैं वो गुनाहगार हैं, और हम किसी को बुरा या गुनाहगार नहीं बोल सकते.
And here Brother Frank has written, no one can claim to have done what was right in all things, not one person.
और कोई भी शख्स, भाई फ्रैंक कहते हैं कि कोई भी शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने हर चीज जो है वो बिल्कुल दुरुस्त की है या मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
Because he said, it is written, that we are like before a mirror, and we see ourselves like in a mirror.
और उन्होंने कहा है कि हम ये ऐसे ही है जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और हमें हर चीज नजर आ रही होती है.
And so no one of us can boast before God. It's impossible.
और हम में से कोई भी जो है वो खुदावंद के सामने खड़ा नहीं हो सकता.
But again, you must, he said like this, Brother Frank has written, you must know, we must recognize where the enemy has captured you, where the enemy has taken hold of you, in what sin.
और फिर वो लिखते हैं, लेकिन आप इस बात को पहचाने कि कहां पर दुश्मन ने आपके ऊपर इख्तियार हासिल किया हुआ है, कहां पर उसने आपसे कोई चीज ली हुई है या आपके ऊपर उसने आपको कोई चीज दी हुई है.
And Brother Frank even says, you must find favor, you must find grace before God to see this, to see where you are weak, where's your weak points, where's your sin, where you are weak and sinner. You must, it's a grace, because some people do it and they go on like this until the end of their life.
और भाई फ्रैंक इस बात को लिखते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन आपने देखना है कि उस खुदा के फजल के अंदर होकर देखना है कि कहां पर मैं गलत हूं, कहां पर मैंने ये काम किया है या कहां पर गलत हो रहा है. ये सारी चीजें हमने उसके फजल में होकर देखनी है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ऐसे ही अपनी सारी की सारी जिंदगी गुजार देते हैं.
एंड देन यू विल सी दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट प्रेशियस थिंग, द ओनली थिंग दैट काउंट्स एट द एंड इज द पीस, इंटरनल पीस विद गॉड. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट.
और फिर आप एक बहुत ही खास चीज को हासिल कर पाएंगे, और वो खास चीज आपको फिर ही मिलेगी, उसका उसके अंदर इत्मीनान वो तब ही मिल सकता है जब आप इन सारी बातों को अपनी जिंदगियों के अंदर रखेंगे. तो
एंड जस्ट अ पैरेंथेसिस हियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड नाउ द इम्पोर्टेंस व्हेन वी स्पीक अबाउट द लीडरशिप ऑफ द पास्टर ऑफ द एल्डर्स. इज रियली इम्पोर्टेंट टू हैव true elders, spiritual elders, spiritual preachers is very important.
और इसीलिए जब हम पादरियों की बात करते हैं या रहनुमाओं की बात करते हैं या बुजुर्गों की बात करते हैं, तो हमने देखना है कि जो हकीकी रहनुमा है वो कौन से हैं, और उनका हकीकी रहनुमा होना बहुत ही ज्यादा लाजमी बात है.
Because if you have associate pastor who orients, give an orientation to his preaching in a way or another, on the left, on the right, the whole church will do like him. He will look like this guy. It is, or even woman in denomination, it is very dangerous.
Because if you are in pastor's hands, who are themselves a pastor, and से वो पास्टर बने हुए हैं, और वो कहेंगे जी कि हम तो मुनक्कद किए हुए पादरी हैं, और फिर आप उन्हीं की तरह बनने की भी कोशिश करेंगे, और आप देखें कि बहुत सी खवातीन भी ऐसे ही जो है वो कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप गलत हाथों के अंदर हैं.
Because what is a sect? A sect, it is very easy to create a sect. You have someone who has the spirit of Nicolaitan and who wants to lead everything in his direction, in his sense, according to what he understands himself.
क्यों क्योंकि बिदत बिदत क्या है बिदत वो है जो कोई खुद से खुद साख्ता बनाई हुई चीज है और वो फिर कैसे बढ़ती है वो उसको बढ़ाने के लिए एक से दूसरे को पहुंचाता है और फिर वो ऐसे ही वो बढ़ती चली जाती है
But the true servant of God leads you to Jesus Christ directly and only to the Lord our Savior
लेकिन जो हकीकी खुदा का खादिम है वो डायरेक्टली आपको हमारे खुदावंद नजात दहिंदा की तरफ लेकर जाएगा
Who can deliver us?
कौन हमें वहां ले जा सकता है
Who can sanctify us?
कौन हमें पाक कर सकता
Who
है
Who can purify our heart?
कौन हमारे दिल को पाक साफ कर सकता है
Who can put us out of the prison of the sin?
और हमें इस गुनाहों की कैद से कौन निकाल सकता है
Who can show us what concerns us personally?
कौन हमें इस बात को बता सकता है कि शख्सी तौर पर हम क्या करें?
And that's why Brother Frank writes, it is the Spirit of God who convicts us of a particular sin.
और ये भाई फ्रैंक लिखते हैं वो कहते हैं कि ये खुदा की रूह है जो हमें हर खास चीज के बारे में बताती है
It's not someone who say, hey, I see you, oh, I saw you, you have done this, accusers of the devil, you know.
और ये ऐसे नहीं है कि जो कहते हैं हाँ मैंने तो तुम्हें ये करते हुए देख लिया मैंने तो ये करते हुए देख लिया ये शैतान के लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं
Unfortunately, it is a characteristic of Satan to accuse. So unfortunately, the people, even the people who are in high level in the society. Unfortunately, they show the characteristics of devil. So unfortunately, they will perish because they do not repent themselves.
और बदकिस्मती के साथ ये किरदार है एक शैतान का और जो कुछ हाई लोग हैं हाई तबके के लोग हैं जो जिनके अंदर ये किरदार पाया जाता है और बदकिस्मती से वो भी एक दिन सजा पाएंगे इसी वजह से।
So we must ourselves and individually in the prayer individually show and put to the light and confess freely but to God not to someone
और हमने शख्सी तौर पर तन्हाई के अंदर अपने खुदावंद के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना है इजहार करना है ना कि किसी इंसान के सामने कि वो हमें तारीकी से उजाले की तरफ लेकर आए
So Brother Frank writes that once the sin is condemned by the light, it's like, for example, you have in your garden, you have a rock, you just pick up the rock, and under the rock, you are some insect, for example, and the insect wants to hide again, because it's in the light. So once it's in the light, the sin It's under the blood, so it's covered, it's condemned by the light. The sin is condemned by the light. Condemned.
और ये ऐसे ही है भाई फ्रैंक कहते हैं कि जैसे एक कीड़ा होता है जो एक उसके नीचे होता है पत्थर के नीचे होता है आप उसको बाहर निकालेंगे तो फिर वो पत्थर के नीचे जाने की कोशिश करेगा और गुनाह भी ऐसे ही है लेकिन हमने उन गुनाहों को जो है वो तारीकी से निकालकर उजाले के अंदर लेकर आना है ताकि वो रोशनी के अंदर आए और फिर वो खून के साथ छुपा दिए जाएं या खत्म कर दिए जाएं
And so he writes that we bring it under the blood of the lamb and immediately instantly the enemy loses his influence the enemy cannot do anything if we bring our sins under the blood
और अगर वो लिखते हैं कि अगर हम अपने गुनाहों को खून के नीचे ले आएंगे तो फिर जो दुश्मन होंगे हमारे वो हमारे उन गुनाहों का कुछ हमसे बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि जब हम उनको खून के नीचे ले आएंगे तो फिर उनके पास कोई असर नहीं रहेगा कि वो हमारे गुनाहों का दूसरों को प्रचार करके हमें सता सकें
तो ब्रदर एंड सिस्टर्स हियर ब्रदर फ्रैंक से दैट इट्स नॉट ओनली a question of knowing it's not only question of knowledge
aur bhaiyo behno yahan par bhai friends kehte hain ki ye सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जी हमें पता है या हमें नहीं पता.
Because it's also, nevertheless, it's also necessary, important to recognize how the enemy paralyzes us.
और इस बात को भी देखना है हमने कि ये लाजमी है इस बात को हमें जानना कि किस तरह से दुश्मन जो है वो हमें माजूर कर सकते हैं.
And you see this word paralyze is really important because it's also paralyzing our tongue.
और ये मफलूज करना या माजूर करना ये लफ्ज क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर हमारी जुबानें भी ऐसे ही हो जाती हैं.
Because for example if a preacher and there's also a lot of testimony in America, everywhere, when a preacher even with the Muslims, when a preacher is blocked by a sin, so he cannot preach, is like paralyzed.
मिसाल के तौर पर ऐसा होता है, ये बाहर के मालिक में भी ऐसा ही है. मिसाल के तौर पर अगर एक कलाम सुनाने वाला शख्स जो है मुनाद जो है वो गुनाह करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो मफलूज हो जाएगा, वो माजूर हो जाएगा और उसकी जुबान जो है वो मफलूज हो जाएगी और फिर वो कलाम नहीं सुना पाएगा.
So I repeat, he said, it is necessary to recognize on what ground the enemy paralyzes us.
और वो कहते हैं, मैं फिर से दोहरा दूं कि ये लाजमी है कि हमें पता हो कि किस सतह पर आकर दुश्मन हमें मफलूज कर सकता है.
एंड सो यू नो दिस लिस्ट ऑफ सिन इन गैलेशियंस 5, जेलोसी, क्वारल्स, एनवी.
और आप इस लिस्ट को जानते हैं जो गलतियों 5 बाब के अंदर लिखी गई है कि किस तरह से वो हमें कर सकते हैं गुनाह से और कौन कौन सी बातों से वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं.
सो नोबडी, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, नोबडी कैन पॉइंट अ फिंगर टू अनदर वन और कैस्ट अ स्टोन टू नो वन.
और कोई भी किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकता और ना ही कोई किसी को पत्थर मार सकता है.
And it's true that we must recognize this, and me the first. I must reach this point to never accuse someone, even people who make abominations on television or whatever.
और बेशक मैं सबसे पहले हूँ, कभी भी किसी शख्स को जो है वो नुकसान मत पहुंचाए, बेशक वो आपके बारे में जो कुछ मर्जी बोलता रहे, और ना ही किसी की तरफ आप नुक्ताचीनी करें. बेशक कोई शख्स ऐसे भी हैं जो टेलीविजन के ऊपर जो है वो ना करने वाले काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको कभी भी उनके ऊपर इल्जाम मत लगाएं.
We are all guilty.
हम सब गुनहगार हैं.
And may God give us the wisdom to be able to speak about sin without accusing sinner.
और खुदा हमें इस काबिल बनाता है कि हम किसी को बगैर किसी के ऊपर इल्जाम लगाए बगैर हम किसी को समझा सके कि हम दुरुस्त काम नहीं कर रहे.
You can read brother Hebrew 12:14, without sanctification no one will see the Lord.
और हम इसको पढ़ते हैं इब्रानियों 12:14 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी जो है वो बगैर पकीजगी के उसके पास नहीं जा सकता.
And so when we speak about the sins, I think that I already talked to you about this. The Catholic confession is not from God.
और आपको मैंने पहले भी ये बात बताई, ये जो कैथोलिक कन्फेशन होता है, जो कैथोलिक इजहार होता है, ये खुदावंद की तरफ से नहीं है.
If you read, for example, at the time of John the Baptist, even there it was written that the people confessing their sins.
और अगर आप देखें, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वक्त में भी देखें, तो लोग जो थे उस वक्त भी अपने गुनाहों का वो दूसरों के सामने इजहार करते थे.
But again, please, you can not have a contradiction in the scriptures.
لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی یا کوئی بھی تضاد موجود نہیں ہے.
There is a biblical work, an operation, and there is a religious one.
اور ایک جو کام ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک مذہبی کام ہے اور ایک بائبل کا کام ہے.
First, and brother, I pray that this sermon that I read from Brother Frank arrives in all the ears of the believers, because it's very important.
اور پہلی بات بھائیو, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پیغام تھا بھائی فرینک کا, یہ جتنے لوگ جو ایماندار ہیں یہ سب کے کانوں کے اندر یہ پیغام جائے.
The biblical confession is in the presence of God.
اور جو بائبلی اظہار ہوتا ہے وہ خداوند کی موجودگی کے اندر ہوتا ہے.
It is only the Holy Spirit who convicts us of sin individually.
اور یہ صرف پاک روح ہے جو شخصی طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے.
It is only the Holy Spirit who leads us to repentance.
اور یہ صرف پاک روح ہے جو ہمیں توبہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے.
And then we uncover our sin. So what was hidden in our life, we uncover so that God can cover it and wipe and destroy it.
اور پھر ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے اور پھر خدا ان کو جو ہے وہ صاف اور پاک کرتا ہے.
And then we will feel by the Spirit if God has forgiven us, that God has forgiven us. God, not a man.
اور پھر ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کیا خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے یا نہیں. یہ صرف خدا ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, نہ کہ کوئی انسان.
And then with the experience of the prayer, in the deep prayer of humility, we will feel the true joy, the true peace in the heart.
اور پھر جب ہم دعا کے اندر جاتے ہیں اور گہرائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر عاجزی کے ساتھ پھر خدا ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور ہمیں قائل کرتا ہے.
And so Brother Frank has written that a confession of sin demanded or requested by someone or even by a community does not lead to liberation.
اور بھائی فرینک لکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کے سامنے کنفیس کر رہے ہیں یا اظہار کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمیں خدا کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کروا رہا, بلکہ وہ انسانی ہوتی ہے.
Because you know that there are churches who interpret, they have dogmas, they interpret things, and they interpret that, oh, it's written confess, so confess in my ears. So they are like the Catholic Church. We cannot confess like this, open our mouth, open the, in public. It's not good. It's not biblical.
اور آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ تنظیموں کے اندر وہ جو ہیں وہ ڈاگماز بنے ہوتے ہیں, اعتراف کی جو چیزیں بنی ہوتی ہیں کہ جی آپ اعتراف کریں تو پھر وہ لوگ ان کو سنتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بائبل کے مطابق درست نہیں ہیں.
It is only God who give a true and full deliverance and perfect freedom.
اور یہ صرف Amen. اور صرف خداوند ہے جو ہمیں حقیقی آزادی اور مکمل طور پر ان ساری چیزوں سے آزاد کرتا ہے.
Impossible, like in some Catholic church or what, impossible that someone grants deliverance or freedom to another. Impossible.
اور یہ ناممکن ہے کہ کیتھولک چرچ جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو آپ کے گناہوں سے آزادی مل سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, یہ ناممکن ہے.
That's why we also need to pray and to enter in the presence of Jesus Christ.
اور اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں اور خداوند یسوع مسیح کی حضوری کے اندر داخل ہوں.
Hallelujah. Hallelujah. And so we receive the forgiveness by faith and the perfect deliverance.
और फिर हम इस आजादी को जो है और इस माफी को जो है वो अपने ईमान के साथ हासिल करते हैं.
That's why Jesus Christ can be also it's like our Moses, let's say, the deliverer. We can call him deliverer, Jesus Christ.
और इसीलिए हम अब खुदावंद यीशु मसीह को कह सकते हैं कि ये हमारा निजात देने वाला है.
And you remember in the Acts, we have also read it. There are four things that the first church did. Among the four things, there is the prayer. So we must also pray individually or so, in group, and for our own soul.
और आप देखें कि हमने अमाल की किताब के अंदर पढ़ा था कि चार चीजें थी जो वो रसूल उस वक्त करते होते थे और उनमें दुआ थी और ये दुआ ही है जो हमें इन सारी चीजों से आजाद करवाती है.
Brother, I would like to read also, we go on in this June 79, a letter number 18, June 79.
और हम इसको थोड़ा और मजीद आगे पढ़ेंगे. इस खत को ये लिखा गया था जून 1979 के अंदर.
We can begin by 1 John 3:3.
और हम इसको शुरू करेंगे पहला यूहन्ना 3:3 से.
Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure, Jesus Christ.
लिखा है और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है.
And you understand this expression of Jesus Christ when he speaks of the vineyard must bear fruit.
और आप इस बात को समझ सकते हैं जब यीशु मसीह ने कहा कि हमने हमारे अंदर फल जो है वो मौजूद होने चाहिए.
For those who have a garden, you must cut the old branches so that if you cleanse the vine it's or the tree it bear more fruit.
और जिनके पास जो है वो गार्डन होता है आप देखें कि आप उनकी जब सफाई करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनकी जो पत्ते शाखे होती हैं जिनको आप काटते हैं ताकि वो दोबारा से कोंपले उनकी निकल सके और वो अच्छा फल ला सके.
That's why we speak of purification of the soul also, of the mind, of the spirit, of the body. You must purify ourselves also.
और इसीलिए हम जो है वो अपनी रूह जो बदन की भी पाकीजगी की बात करते हैं कि हम किस तरह से लाजमी है कि आप इसको भी पाक करें.
My brother, can read Ephesians 4:20-24.
और हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 बाब 20-24 आयत तक.
Where is written, but you did not learn Christ in this way, if indeed you have heard him and have been taught in him, in accordance with the truth that is in Jesus. But you put off as regards the former conversation, the old self, which is corrupt according to the deceitful desires, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new self, which the new man, which according to God has been created in true righteousness and holiness. Amen. Can you read it, brother? Ephesians 4:20-24. Hallelujah.
लिखा है इफिसियों 4 बाब 20 से 24 आयत तक 20. मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी. 22 कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहादतों के सबब से खराब होती जाती है. 23 और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ. 24 और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है. आमीन.
हालेलुया. एंड अगेन ब्रदर फ्रैंक राइट्स अगेन द सेम द मोमेंट वेयर व्हेन द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर डिस्कवर्ड एंड ब्रॉट इनटू द लाइट द एनिमी लूजेस हिज राइट.
और फिर भाई फ्रैंक लिखते हैं कि वो लम्हा जब आप इस बात को जान पाते हैं कि हमने अपने گناہوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کر آنا ہے تو تب آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان کا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
And in English the word is atone. We say that the blood of the lamb atone for our sins. So it means that the blood of the lamb is shed on our behalf because of our sins.
اور لکھا ہے کہ اس کا جو خون تھا اس برے کا جو خون تھا وہ ہمارے لیے بہا ہمارے گناہوں کی خاطر بہا ہے.
Hallelujah. And so the blood of Jesus Christ cleanses completely our sins.
اور خداوند کا جو خون ہے وہ مکمل طور پر ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے.
And another very important, so after the fruit of, you know, the fruit of the spirit, love, joy, peace, etc.
اور آپ جانتے ہیں روح کے پھل کو محبت خوشی اطمینان تحمل اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ہیں.
So we must be able to separate light and darkness.
اور ہم نے اس قابل ہونا ہے کہ ہم تاریکی کو روشنی سے الگ کر سکیں.
And we pray one another and we pray for the responsible of the church.
ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے اور ہمارے جو چرچ کے ہمارے جو کلیسیا کے رہنما ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے.
Because here Brother Frank writes something very important.
کیونکہ یہاں پر بھائی فرینک ایک بہت ہی خاص بات لکھتے ہیں.
May God have mercy.
خداوند رحم کرے.
Because it's only when the works of the flesh have ceased and finished that the ministry of the spirit can begin.
اور جب جو جسمانی کام ہے جب وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر جو خدا کے کام ہیں وہ شروع ہوتے ہیں.
You understand? It's only the ministry of the spirit can only be accomplished when all the works of the flesh have ceased.
جو خدمت ہے وہ تب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہمارے جسمانی کام جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے.
And so you know in German maybe you have heard about this, when we say a gospel in fact it is good news.
اور جرمن کے اندر جب ہم انجیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری.
And German is very precise, so it's a good news of salvation.
اور جرمن جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے ہماری نجات کی.
And so Brother Frank writes here in his letter the 27 April 79.
اور 27 April 79 کے اندر بھائی فرینک جو ہے وہ لکھتے ہیں.
He said that the Holy Spirit talked to him.
انہوں نے کہا پاک روح نے ان کے ساتھ بات کی.
And say wherever the gospel, so the gospel is the good news, the good the good tiding of the salvation, wherever the gospel is preached, the same things written in the gospel will be fulfilled.
اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ خوشخبری سنائی گئی جو چیزیں اس خوشخبری کے اندر لکھی گئی وہاں پر وہ ہوئی.
And you know what, today or before yesterday I was thinking of this, of exactly of this good news of salvation.
اور آپ کو پتا ہے کہ میں آج یا کل میرے خیال میں اسی بات کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہا تھا خوشخبری نجات کی خوشخبری کے اوپر.
Sometimes we forget that why Jesus Christ came, what is this good news that was brought to us when he was born.
بعض دفعہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں یہ مسیح آیا اور یہ کیوں خوشخبری سنائی گئی.
Healing the sick.
بیماروں کو شفا دینے کے لیے.
Salvation to the sinners.
گناہگاروں کی نجات کے لیے.
Deliverance to those who are bound by the sins.
جو گناہوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے.
So without Jesus Christ, there's no gospel.
یسوع مسیح کے بغیر کوئی خوشخبری نہیں.
With Jesus Christ, we have the full gospel.
یسوع مسیح کے ساتھ ہمارے پاس مکمل خوشخبری ہے.
And so the Acts of the Apostles are the continuation of what God, of Jesus Christ, did with the power of the Holy Spirit. We just go on. It is a continuation.
और रसूलों ने वो तमाम चीजों को जारी रखा जो यीशु मसीह ने किया और हमने भी उन सारी चीजों को जारी रखना है.
And you even see in the act of, for example, act with Paul is written that Paul was praying and the sicknesses left the people and the evil spirits came out of the people.
और आप देखें कि जैसे पौलुस जो था वो दुआ कर रहा था और जो बुरी रूहें थी वो लोगों के अंदर से निकल रही थी.
And even those who make, for example, the magic books, you remember this, even they burned this book.
और आपको याद होगा कि जो लोग जादू करते थे उनके वजह से ये किताब भी जली.
So you see that we in 2025 we must go on with the same spirit, with the same good news.
और आपने देखना है कि 2025 के अंदर भी हमने उसी किताब के साथ उसी खुशखबरी के साथ हमने आगे बढ़ना है.
Hallelujah. And the, also we remember that the first church there was also the fear of God in the first church.
और आपको याद है कि पहली जो कलीसिया थी उनके अंदर खुदा का खौफ था.
May God have mercy and forgive us. By His grace.
खुदावंद हम पर रहम करे और अपने फजल के साथ हम पर तर्स करे.
Because sometimes we don't fear God and we do things, but at the end of the day He sees everything.
और बाज़ दफा हम हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं होता और हम काम करते चलते हैं, लेकिन आखिरी एक वक्त ऐसा आता है जब वो देखता है इन सारी बातों.
That's why the fear of God must be back in the church, like at the beginning.
और इसीलिए खुदा का खौफ जो है वो चर्च के अंदर होना लाजमी है जैसे शुरुआत में था.
And so at the beginning of the church and at the end of the church, from the beginning to the end, everything should be led by the Spirit. But before this, we must not have wars or quarrels, whatever the one with another.
और जो हमारी कलीसिया है उसको जैसे पहली कलीसिया थी वैसी कलीसिया बनना, और हमारे अंदर झगड़े नहीं होने चाहिए, हमारे अंदर जो है वो बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ हसद नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए.
And so you see, maybe you have heard sometimes some people wants to leave the church, they want to go out because they say, oh, there's nothing happening here.
और आप देखें कुछ लोग जो हैं वो चर्च के अंदर से बाहर निकल आते हैं, छोड़ देते हैं, जी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है.
But Brother Frank has written this, it is enough to have a little hostility.
लेकिन भाई फ्रैंक यहाँ पर लिखते हैं कि अगर वहां पर थोड़ी सी भी आरामदायक जगह है तो वो भी बेहतर है.
Even among the sisters, for example.
बेशक जैसे कि बहनों के दरमियान में भी जो है वो अच्छा अखलाक होना चाहिए.
Or between the brothers, because someone wants to be to have the preeminence, like the Bible said, someone wants to be the chef.
और भाइयों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बाइबल कहती है कि कोई किसी का मतलब कोई किसी के ऊपर सरबराह लग जाए.
So if someone has a party of partisanship, you know, I am for this, I am for this one, I am. You see, a spirit of partisanship.
और इसके अंदर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी मेरा फलां काम है, मेरा फलां काम है, मैंने ये काम करना है, अपने अपने कामों को अलग अलग करना है, ये भी एक रूह है.
A spirit of dispute, contention, discord.
और झगड़ालू जो रूह है वो नहीं होनी चाहिए.
All these things are a direct hindrance to the action of God.
और ये तमाम चीजें खुदा के काम के बिल्कुल खिलाफ हैं.
And also it's easy to see the big sins of the other people, but we must really see our own life.
और ये आसान है दूसरों के बड़े गुनाहों को देखना, लेकिन हमने अपनी जिंदगी की तरफ गौर करना है.
May God grant us to be sincere before Him.
और खुदा हमें जो है वो तहरीक बख्शे कि हम अपने आप को दुरुस्त तरीके से देख सकें.
We must always see behind behind a work of the flesh. You must know, behind a work of the flesh lies an evil spirit.
और हमने उन तमाम चीजों को देखना है जो हमारी जिस्मानी जिंदगी के अंदर हो रही हैं कि कौन से हमारे ऐसे गुनाह हैं जो पूरी रूह है जो बुरे काम है वो कौन से हैं
But behind the fruit of the spirit there is the spirit of God.
लेकिन हमने देखना है कि जब हमारे पास रूह होगा रूह का फल होगा तो उसके अंदर हमारा कौन सा काम
We speak of two kingdoms here.
यहां पर हम दो बादशाह की बात करते हैं
And that's why you can read brother in Colossians 3 that it is written that we must renounce what's put away these things
और इसीलिए हम जब कुलचियों के अंदर देखते हैं तो हमने जो है इन चीजों को बाहर निकालना है अपनी जिंदगियों के अंदर से
the anger away
गुस्से को बाहर निकालना है
the malice the slander filthy talking out
और जो आप देखें कि जो बुरे लोग हैं जो बुरी गालियां बकने वाले लोग हैं
no lying
गलत बातें करने वाले लोग हैं ये सब बाहर निकाल दिए जाएंगे उस बादशाहत में से
we must not lie when another or you shut our mouth but you don't lie
हमें एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना बेशक आप अपना मुंह बंद रखें
and it's well written clearly this you see in Colossians 3 that we must put off the old man and the old self and put on a new man a renewed man
aur hame apni purani zindagi ko purani zindagi mein se purani shakhsiyat ko bahar nikal dena hai khatam kar dena hai aur ek nayi makhlooq banna hai nayi shakhsiyat apnani hai
it's written that we must be humble gentle patient
aur jaise likha hua hai ki humne kaisa banna hai हमने आजिज बनना है अच्छा बनना है और सबर वाला बनना है
एंड फॉरगिव वन अनदर
और एक दूसरे को माफ करना है
बिकॉज जीसस क्राइस्ट ऑल्सो फॉरगिव अस सो वी मस्ट ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल दैट वी फॉरगिव लाइक जीसस क्राइस्ट हैज फॉरगिवन अस
और क्यों क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें माफ किया और ये आम है कि हम भी जैसे उसने हमें माफ किया हम भी ऐसे ही दूसरों को माफ करें
So again, we must pray that God grant us to be under the action of the Holy Spirit.
और फिर हम दुआ यही करेंगे कि खुदा जो है वो हमें हमेशा पाक रूह के अंदर रखे और उसकी रहनुमाई में हम चलें.
So that we must grasp in faith the total forgiveness. We must have it by faith. The total forgiveness of our own faults, of our own sins. We must have it by faith. So that we can give to the others.
और हम अपने ईमान के साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो माफी हासिल कर सकें और यही बात हमने दूसरों को भी सिखानी है कि माफी जो है वो ईमान के साथ मिलेगी और मुकम्मल माफी मिलती है
And this is why I ask you to pray for me and then I know that it is also your fight. The greatest battle ever fought it's always in the brain
aur ye maine kyon kaha kyunki ye mere sath bhi hai aur ye aapke sath bhi aisa hi hoga
why because
ek badi jang jo hamare khud ke sath hai
and because brother frank writes here we must bring our sins at the foot of the cross
aur क्यों क्योंकि भाई ने इस बात को लिखा कि हमने अपने गुनाहों को स्लीप के कदमों के पास लेकर जाना है
You understand why I say it's important to have spiritual brothers
और आपको पता है कि क्यों मैंने ये बात कही कि भाई जो है वो रूहानी होना चाहिए
Spiritual brothers are not superman who never sin were the perfect people
और जो रूहानी भाई होते हैं वो कोई सुपरमैन नहीं होते जो हमेशा जी कामिल लोगों को ही देख सके
When we speak of elders, we speak of the people who have experienced this humility and the hate, the hating of their sin. We must know the elders before preaching. We must hate our sins. We must hate the sin in general.
और जब हम elders की बात करते हैं तो elders वो लोग हैं जो जिन्होंने ये सारा तजुर्बा किया और वो जानते हों कि हमारे गुनाह क्या है और हमें किस तरह से अपने गुनाहों के साथ अपने गुनाहों से नफरत करनी है.
And so I say this, the greatest battle ever, the greatest battle is in the brain. Why?
और मैंने क्यों ये बात कही कि हमारी एक बड़ी जंग है, क्यों?
Because Brother Branham explained that Satan always attack in our thought, in our memory, in our conscience, always, always.
क्यों? क्योंकि भाई ये बात कहते हैं कि शैतान हमेशा जो है वो हमारी सोचों के अंदर, हमारे ख्यालों के साथ, हमारे जज्बातों के साथ, हमेशा इनके साथ काम करता है.
And so when you hear Brother Frank, he said, we must bring your sins to the foot of the cross, and you must leave them there, like there's a song in English, leave them there. You must leave at the cross of Calvary all our sins.
और इसलिए मैंने ये बात की क्योंकि वो एक गीत के अंदर कहते हैं कि हमने अपने तमाम जो गुनाह हैं उनको उस सलीब के पास, उसके पास छोड़ देना है और फिर वो हमारे गुनाह जो है वो माफ होते हैं.
And listen well, so say the Lord, and no longer think and no longer speak of them.
और फिर गौर से सुनिएगा, ना उनके बारे में ज्यादा सोचें और ना उनके बारे में ज्यादा बात करें.
And so when you have Satan who always reminds you, or even brothers, even sisters, remind you this, you must recognize, like Brother Branham called them, tormentor. Satan are tormentor. They want to remind you always.
और फिर आपके पास ऐसे कुछ भाई भी होते हैं, कुछ बहनें भी होती हैं, जो बार बार आपको आपके गुनाह याद करवाते रहते हैं, बार बार आपके गुनाह जो है वो याद करवाते रहते हैं. लेकिन उनके लिए भाई कहते हैं कि वो कौन है, वो लोग हैं जो कभी भी आपके गुनाह को जो है वो छुपा नहीं रहने देते, हमेशा उसको ताजा करते रहते हैं.
So you realize what I said, when there is a pastor or preacher who never teaches this to you or always show the contrary, they show an example of attacking the others, or speaking of his former life, and say, look, and attacking the life of the people, you know, with a spirit of accusation, it is difficult for him to be an example. That's why elders must be able to give good example of humility also.
और इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को खादिम बोलते हैं लेकिन हमेशा वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो दूसरे लोगों को उनके गुनाह याद करवाते रहें, उनके ऊपर हमला करते रहें या बातें उनसे ऐसी करते रहें. लेकिन इसलिए ये बात दुरुस्त है कि आपने ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के करीब ज्यादा नहीं जाना क्योंकि वो हमेशा आपके गुनाहों को उजागर करते रहते हैं.
हालेलुया. Hebrews 9:14. You can read it.
Hebrews 9:15.
How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Amen.
Amen.
Read it. Hebrews 9:14.
Yes. और इसी सबक से वो नए अहद का दरमियानी है ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिराज को हासिल करें. आमीन.
हालेलुया. And the last verse for today, Revelation 1. You can read 1, 5 and 6. Revelation 1, 5 and 6 was written to him who loved us and freed us from our sins by his blood and made us a kingdom of priests to his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Hallelujah.
Amen. लिखा है मुकाशफा 1 बाब उसकी 5 से 6 आयत तक. ये आखिरी आयत जो आज के लिए है, 5. और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی. آمین.
Hallelujah. And you know what Brother Frank writes at the end of this letter, all this letter, he said, acting on behalf of God.
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس خط کے آخر میں بھائی فرینک نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اداکاری کرتے ہیں خدا کے ساتھ ہونے.
Hallelujah. So may God be with us.
اور ہمارا خداون جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو.
And as I said, it's it's easy to preach, it's easy to do this, but we must ourselves we must live what we preach.
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہہ دینا یا کلام سنا دینا آسان ہوتا ہے کہ جی ایسا کرنا ہے, لیکن خود کو اس کلام کے اوپر یا اس کلام کو خود پر اطلاق کرنا مشکل ہے.
I remembered one of the first sermon that I recorded of Brother Branham was the greatest battle ever fought.
اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جو پہلا پیغام ریکارڈ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ایک بڑی جنگ.
But the battle is always there. Always attack is always there. But we must go by faith and let everything at the feet of Jesus Christ.
اور لڑائی جو ہے یہ ہمیشہ ادھر ہی رہتی ہے, ہمیشہ چلتی رہتی ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس کے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دینا ہے.
Hallelujah. So brothers and sisters, these letters of Brother Frank and these books are crucial for our preparation because it is the spiritual food in due season.
اور میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ جو کتابیں ہیں, یہ جو خط ہیں بھائی فرینک کے, یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ روحانی خوراک ہے.
And if God will, this thematic of forgiveness against accusation, I would like to go on like this, reading what Brother Frank has written on it, because it's really something personally that I have in my heart.
اور خداوند کے فضل کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اسی کو لے کر, اس معافی کو لے کر ہم آگے بڑھیں, کیونکہ یہ میرے دل کے اندر ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم اس کو مزید سیکھیں.
God bless you in the name of Jesus Christ.
خداوند آپ سب کو برکت دے یسوع مسیح کے نام سے.
Can I ask your brother another who can pray, and we pray for this so that the Lord speak to us and fulfill his word in our life.
اور میں چاہوں گا کہ بھائی جنہوں نے ابتدائی دعا کی تھی وہ دعا کریں کہ خداوند اس کلام کو ہماری زندگیوں میں مکمل کریں.
And give us also the courage for everybody, the courage to take the sermons and to re-listen again.
اور ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ضرور سنیں.
It was yesterday or before yesterday, brother Farman was in Taxila, or he received the visit of brother of Taxila, and I remember the sermon, so I re-listened again to this sermon. It was 23. So you see, it's always good to re-listen to the old sermons.
اور کل یا پرسو بھائی فرمان جو تھے وہ ٹیکسلا کے اندر تھے, اور میں نے پھر مجھے یاد آیا اور میں نے اس پیغام کو دوبارہ سے سنا جو ٹیکسلا میں ہم نے سنایا تھا, اور یہ اچھا ہوتا ہے کہ پیغاموں کو دوبارہ سے سننا.
I think that we, in the car, for example, I try to listen the gospel one, Luke, I think. So we must always have an appetite, because it's written, must have an appetite to listen to the word of God. If not, we will always begin to sleep, and then we sleep, and then we forget the word of God.
اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو ایک اچھی خوراک کی طرح ہمیشہ لیتے رہیں, کیونکہ یہ جب ہم اس کو خوراک کی طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں قوت اور توانائی بخشتی ہے, اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے کلام کو سیکھنے کا, اور آپ اس کو ضرور دوبارہ سے سنا کریں.
So I pray that another pray for this sermons of today and the sermons who have to come, and pray for me. May God bless you in the name of Lord Jesus Christ.
اور خداوند آپ سب کو برکت دے. آج کے اس پیغام کے لیے بھی دعا کریں اور آگے جو مزید ہم پیغام سیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ اس کو دعا میں رکھیں کہ خداوند سارے وقت میں ہمارے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے.
ہللویا 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 ہللویا.
بھائی دانش اگر ادھر ہیں تو آپ دعا کریں, نہیں تو اگر کوئی بھائی موجود ہیں تو وہ ضرور دعا کریں.
ہللویا.
قدوس الفاج زندہ آسمانی باپ, میں ایک دفعہ پھر سے تیرے حضور جھکتا ہوں, اپنی تمام تر سوچوں کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں. قدوس ابھی آج کے اس کلام کے وسیلہ سے قدوس ابھی اس کلام کو میں تیرے حضور میں رکھتا ہوں. یہ صرف سننے کی حد تک نہ ہو قدوس ابھی, بلکہ یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے اور عملی طور پہ یہ ہماری زندگیوں میں کام کرے. جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے قدوس ابھی, جتنے یہاں پہ بہنوں بھائیوں نے جتنے خاندانوں نے اس کو سنا ہے قدوس ابھی, یہ سن کر بھول نہ جائیں قدوس ابھی, بلکہ اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں اس کلام کو نقش کریں اور اس کو اپنے عملی زندگی میں استعمال کریں قدوس ابھی. اسی طرح قدوس ابھی جتنے بہن بھائی یہاں پہ موجود ہیں خداوند, اس کلام کو آگے پھیلانے والے بن سکے خداوند, روحوں کو بچانے کا وسیلہ بن سکے میرے ربی. سبھی میں تمام گھرانوں کے لیے تیرے حضور میں برکت کی دعا کرتا ہوں قدوس ابھی. برادر برونو کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں, جو بھی ابلیسی حملے ہیں, جو بھی شیطانی قوتیں ہیں, جو بھی پریشانیاں ان کی زندگی میں ہیں, وہ یسو کے نام سے ابھی سے جاتی رہے اور تیرا بندہ آزاد ہو قدوس ابھی. برادر سیمل کے لیے جو ترجمان ہے قدوس ابھی, ان کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے خاندان کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں. جتنوں نے آج کے دن میں یہ کلام سنا قدوس ابھی, سب کی جو پریشانیاں ہیں جو بھی مسائل ہیں وہ تیرے یسوع نام سے جاتے رہیں قدوس ابھی. ایک بار پھر سے خداوند تیرے ہاتھ کو مانگتا ہوں, سب پہ تیرا ہاتھ پڑا رہے, من تمام کمزوریاں کو تو لے لے, ہمیں مضبوط بنا قدوس ابھی, تاکہ اس کلام کو ہم بھر چڑھ کے آگے پھیلانے والے بن سکے, روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بن سکے قدوس ابھی, تیرے کلام کی خوشخبری پھیلانے والے بن سکے. اس دعا کو سن اور قبول کر, تیرا جلالی نام لے کے مانگتے پا لیتے یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین.
Hallelujah. God bless you. God bless you all in the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, brother and sister.
Amen. Thank you, brother.
Hallelujah. So God bless you all. I don't know who's there. Try to always invite more people.
Hello. Hello, brother.
God bless you. I don't see where you are. Maybe I must. Okay, Mother Danish, Mother Gil, Salim, God bless you.